ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को क्रूर आक्रामक कार्रवाई बताया और इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से अमरीका को जिम्मेदार ठहराया।
ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग्ची ने देश के तीन परमाणु संयंत्रों पर अमरीकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। श्री अराग्ची ने चेतावनी दी कि इन हमलों के दूरगामी परिणाम होंगे। अमरीकी हमले के कुछ ही घंटों बाद जारी बयान में ईरान ने अमरीका पर इसराइल के साथ तालमेल का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि अमरीका ने उसके उन शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं।
ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने IAEA को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनका देश अमरीकी हमलों की जांच कराना चाहता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से ये भी चाहता है कि अमरीकी हमलों की निंदा करे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर अमरीकी हमलों से विकिरण के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अमरीकी हमलों के बाद एजेंसी की ये पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
ईरान ने आज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल पर मिसाइल हमले किए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कोर ने पुष्टि की कि ये हमले हाल ही में ईरानी क्षेत्र पर अमरीका और इसराइल हवाई हमलों के जवाब में किए गए। इसराइली रक्षा सूत्रों के अनुसार ईरानी मिसाइल हमले में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की और मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल रात मशात से विशेष विमान 290 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस प्रयास के लिए लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने रुके हुए नक्सल ऑपरेशन को तेज गति से शुरू किया। रायपुर में आज राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के शिलान्यास समारोह में उन्होंने ये बात कही।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने दो लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा से संबद्ध थे। देश में निर्मित 17A स्टील्थ युद्धपोत INS नीलगिरी आज विशाखापत्तनम पहुंच गया है। मुंबई में बने INS नीलगिरी का अब विशाखापत्तनम गृह बंदरगाह होगा तथा ये ईस्टर्न स्वाड सनराइज फ्लीट का अभिन्न अंग होगा। लीड्स में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 293 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज तीसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत ने अपनी पहली पारी में 471 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।